इसलिए के और का, पुरुष कहता है मयूर के और वो कहती है का, ध्वनि लग रही है। और कृष्ण को के पास में जब आए, निकट आ गए तो देखते ही मेघ समझ करके और नृत्य करने लगे। कृष्ण ने देखा जैसे 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 वो ताल से वो नाच रहे हैं, कृष्ण उसी ताल में बंसी बजाना आरंभ किया, इसलिए हो गया गोविंद वेणु अनु, कृष्ण की बंसी बज रही है पीछे पीछे, उसके ताल स्वर से जैसे मयूर नाच रहे हैं ठीक में मिलाने लग गए। ये दूसरा अर्थ कुछ उपयुक्त अधिक लगता है पहले अर्थ, क्यों? मयूरों ने देखा जी हम जैसा नाच रहे हैं और उसी ताल के साथ में तात्थे थैया जैसे होता है, ऐसे ये स्वर से ये जैसा हम नाच रहे हैं और उसी स्वर में ये बंसी बजा रहा है, बस प्रसन्न होकर के बादक को अपना सबसे मूल्यवान चीज उनको अर्पित किया। बंगाल में भी ऐसा होता है कि नहीं मैं नहीं जानता, इधर हम देखते हैं ये सब नाचते हैं ना, ये रासों में जो नट नट बने होते हैं या जो कृष्ण बनते हैं, ये सब जब सुंदर उसे गान किया या नाचा तो लोग 2 रुपए की नोट निकाला, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की और खड़े होकर के ऐसे कर करके और दे दिया उसने उठावट जिसको कर, कोई बजाने वाला आदमी सुंदर बजा रहा है तो उसको ने उठावट करते थे। मयूर ने कहा देखिए इतना आपने सुंदर बात पे किया है और हमारे नाचने में आपने सहायता की, आपकी बंसी की ध्वनि नहीं तो हम तो नाच नहीं सकते, इसलिए हम प्रसन्न हो गए और हम आपको इसके अतिरिक्त हम क्या दें, हमारे पास यही है सबसे, हमारा यही है, इसमें आपके प्रेयसी के आंखों को हमने लगा रखा है, राधा जी की आंख, और इसमें इतने सुंदर रंग है, मन स्वयं सृष्टिकर्ता ने उसमें भर दिए हैं, ऐसे चीज को हम उपहार दे रहे हैं। कृष्ण ने उसे मट्टी से उठा लिया और उठा करके एवं अस्तु कह करके सिर दिया। अब हम एक दिन नहीं, अब जीवन भर भी इस चीज को कभी नहीं उतारेंगे, बस लेकर के सदा के लिए इसको मनो रख लिया। पृच्छा दृशा, इस दृश्य को लोगों ने देखा, क्या देखा? कृष्ण की बंसी धरी और मोरों का नाचना, मोर अब केका केका बोलना भूल गए, पक्षी कलरव कर रहे थे वहां गोवर्धन के पर्वतों के शानु देश में, शानु देश कहते हैं पर्वत के ऊपर में ही किंतु समतल भूमि हो तो उसको शानु देश कहते हैं, वो शानु देश में बैठे हुए पहाड़ों के ऊपर में, पर्वतों के ऊपर में, उसके वृक्षों के ऊपर में, कदम्ब और तमाल के वृक्षों में बैठे हुए और देख रहे थे। पहले तो चाह चाह रहे थे किंतु बंसी की ध्वनि देखा और कृष्ण का मुखारविंद देखा और मुर्नो का नोचा देखा, नाचना देखा, अब वो बोलना चाह चाहना कोयल कुकना भूल गई, सुख पक्षी ये सब बोलना भूल गए, सब कुछ भूल गए, जैसे हरि कथा हो रही है सभी लोग भूल जाते हैं अपना बोलना चाहिए, उनका यह भाव और प्रेम देकर के सभी लोग विस्मित हो गए और वो देख रहे हैं। परीक्षा विषाण अवतानी समस्त सत्व, जितने भी सत्व पशु पक्षी इत्यादि सभी थे, बंदर सब शोर मचाते हैं इधर उधर लंफ देते हैं, वो अपना भूल गए सब, चुपचाप ऐसे होकर के जैसे मानो सिद्धांति महाराज, पूज्य पाठ सिद्धांति महाराज के मंदिर के ऊपर में ना दिया नहीं, कान कोई पकड़ करके ऐसा चुपचाप बैठे, ऐसे बंदर हो जैसे बंदर एकदम पूरे रूप में बैठ गए, पशु पक्षी इत्यादि बोलना चलना चलना फिरना सब कुछ। इसके 3 कारण, कृष्ण का मुखारविंद या उनके सियंगों का दर्शन और उनसे बंसी की ध्वनि और मोरों का इतना सुंदर रूप से नृत्य देखकर के गई थी वृंदावन के वर्णन करने के लिए, यही असल लग्न उनका कहते हैं, गई थी कृष्ण का वर्णन करने, कृष्ण को छोड़ दिया, कृष्ण के बंसी को छोड़ दिया, अब उनके कृष्ण से स्पर्श है कि वृंदावन भूमि की, तो वृंदावन की भूमि के वर्णन करते जा करके और वर्णन करने लगी मयूरों का, इसलिए उनका विक्षिप्त मनसो इनका विक्षिप्त चित्त है ना, कोई ठीक नहीं ये कब कैसे कर, जहां थोड़ा सा संबंध मिला बस उस चीज को छोड़ करके उस पर कुछ डाल से उस पर विक्षिप्त मनुष्य है। प्रेक्षा त्रिशानु अवतानी समस्त सत्यम, समस्त सत्य ओहो हम लोग का जीवन बेकार वृथा गया, बेकार गया कैसे गया। ये मोर लोग कितने स्वाधीनता से स्वच्छंदता से नृत्य कर रहे हैं, बंदरों को भी सौभाग्य मिला, वहां के घासों को सौभाग्य मिला, पेड़ों को मिला, पर्वत को मिला, ये सौभाग्य हम लोग को मिला। ये हमारे कितनिया नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, पशु पक्षी झुरे पाठान विदरे सुनी जार गुण गाथा। महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, महाप्रभु जी की गुण गाथाओं को सुन करके, उनकी महाबदान्यता को सुन करके, उनकी कृपा की ये विशालता देख करके, जैसे सब पर उन्होंने कृपा किया, उच्च संकीर्तन ताते करीला प्रचार स्थिर चर जीवेर खंडाई दसुचार। फिर कहते हैं जैसे एक समय ते जहां जन्म होलो ना जन्म ये सब कह रहे हम लोगों को, हम लोगों को भजन किसको कहते हैं, हमने मनुष्य जन्म लिया, गुरु कारण भी हमारा दुआ, कुछ शास्त्र भी सुना और कृष्ण के भजन के लिए गुरु की सेवा के लिए तनिक भी विरह वेदना नहीं हुई, भगवान के लिए तनिक भी हाय है हमारा भजन नहीं हुआ, अनर्थ में सारा जीवन चला गया। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महामुक्त पुरुष कृष्ण के परिकर कह रहे हैं, वृद्ध काल आओ सब सुख भाग पीड़ा बसे हई भूता कर सर्वेन्द्रिय दुर्बल हीन कलेवर होगा भावे दुखी तब। वो कह रहे हैं हम लोगों की शिक्षा के लिए, हम लोगों को इसके लिए तनिक भी दुख कष्ट कुछ भी हम लोग क्रोध इत्यादि काम दोष ये सब कुछ भी नहीं छोड़ते तो भगवान का भजन कैसे होगा, इन सब विषयों में कहां हम प्रवेश करेंगे। जो हम लोग भी वो कहते नहीं पालन को सुख इत्यादि सब छोड़ करके कब हम दिन रात किसी की चिंता में रहे, कब गौड़ बने सूरत धनी चटे हा राधे हा कृष्ण बोले ये सब भाव हम लोगों को कब होगा। यदि दिन रात हम अपने अभाव के संकोच में ही दुखी लगे रहे, ये हमको क्या अभाव है दुख क्या इसी के दूर करने में रह गए सारा जीवन और इसके लिए चिंता करने का अवकाश नहीं हुआ। नाना गुरु हमारे पढ़ते ना ये सब दशम स्कंद कखनो खबरदार छुब कोनो कृष्ण लीला चरित्र सुन बन महाप्रभु रे सब बोले लीला सुन तो सुनेगा कैसे, दिन रात तो उसी में गज गज कर। इसलिए हम लोगों का कब ऐसा सौभाग्य होगा जो सबको छोड़ करके दिन रात इन्हीं के चिंताओं में निमग्न होकर के गुरु वैष्णव का अनुभव पूर्ण करते हुए हम लोग इसमें लगे। धन्यास्मूढ़ो हरिन्नयेता जानंदनंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजां दधौ विरचितम प्रणयावलोकय। धन्यास्मूढ़ अरे हम लोगों की बात मूढ़ मतयो अत्यंत मुझो मूढ़ है मति जिनको कैसे मैं मर जाऊंगी कैसे मेरी रक्षा हो इसकी चिंता नहीं है, व्याधों की एक बंसी की तान पर भूल जाती हैं जो हिरणे और एक लकड़ी पर भार दे करके बस अपना भार देते हैं गिर जाती हैं और बहेलिया को उसे मार कर मूढ़ मत है। कोई भी ज्ञान इनको नहीं है ऐसे ये मूढ़ जो हिरणियां हैं नंदनंदनम उपात्त विचित्र वेश। अरे हम बुद्धिमती होकर के क्या हो गया, हम बड़े बुद्धिमान हैं हमसे अधिक कौन चिंता करने वाला है, अच्छा बुरा हम अपना सब समझते हैं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा।
उसे तो वो मूढ़ जो हिरण्यकश्यप है वो लाखों कोटि धन्य है, एक दो बार नहीं। उसी को कह रहे हैं नंदनंदन उपात्त विचित्र भीषण, उनका चित्र विचित्र, विचित्र मैंने क्या, चित्र बड़ा सुंदर होता है, उससे भी विशेष रूप से चित्र, चित्त को संपूर्ण रूप से आकर्षण करने वाला, उसको कहते हैं विचित्र। नंदनंदन के विचित्र वेश को देख करके और आकर्ण वेणु रणितम, कृष्ण के वेणु को सुनकर सह कृष्ण सारा अकेले नहीं, उनके पतियों को साथ में पीछे पीछे लिए हुए और कृष्ण को आकर के देखने लगती हैं और कानों से वंशी ध्वनि का पान कर पूजा, कृष्ण के लिए पूजा अर्पित करते हैं और कृष्ण क्या करते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं, बड़े प्रेम के साथ में उनकी दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि हम मर जाती तो हिरण के रूप में आती, गई थी हिरणों को, हिरणों से कृष्ण का संपर्क है ना, अब चली गई कहां पर, कृष्ण सारों पर, कृष्ण सार माने हिरणों के ऊपर, क्यों, कृष्ण सार माने उनके पति हैं, उनकी सहायता कर रहे, अरे तू कृष्ण की सेवा करेगी, इसी जगत में वही धन्य है जिनका पुत्र अथवा जिनका पति कृष्ण का भजन करता है और उसके लिए सहायक होता है। जिनका पति कृष्ण भजन के प्रतिकूल है उतने तो अच्छा है जो विवाह ही नहीं हो। यहां पर गई थी हिरणियों के लिए संपर्क में बोलने और बोलने जाकर के कहां चली गई, विक्षिप्त चित्त होकर के कृष्ण सार हिरणों के ऊपर, ओह उन्होंने कृष्ण को सार बना रखा है ना, इसलिए अपनी पत्नियों को कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई क्या कह लेगा तुम्हारा, कहेगा तो हमी को तो तुमको रखना है, हम तुमको छोड़ नहीं सकते, चलो आगे चलो हम पीछे चल रहे हैं, तुम कृष्ण को यथेच्छ रूप में तुम दर्शन करो, हम लोगों के ये सब कुटिल पति यदि सुन लिया कभी जो कृष्ण को जो बहुत दूर से देखा तो हमारे प्रति क्रोध करते हैं, घर से निकालने की चेष्टा करते हैं, मारने की, घर में बंद करते हैं कि ये सब चेष्टा करते हैं, इसलिए का क्या अच्छा होता है जो हम ही हिरणी होते और हमारे पति ये हिरणी सार होते, सार मृत कृष्ण सार हरिण होते और हम उनके पीछे पीछे, वो आगे आगे हम चलते पीछे पीछे आकर और कृष्ण का हम दर्शन करते, ये लालसा का, इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, आज पंचा कर हम लोग यही देखें, इस जन्म में एक समय एक मिनट भी बर्बाद न हो, विशेषकर चतुर्विदा का कृष्ण की लीला कथाओं में, वैष्णवों के लीला चैत्र में, विशेष करके वृंदावन से महाप्रभु जी के तरफ में, महाप्रभु जी के लीलाओं और उनके अवधानों के तरफ में विचार करें और वहां गौधाम में रह करके क्या करेंगे, गौर प्रेम में यदि डूबेंगे तो उतर आएंगे कहां, वृंदावन, इसलिए हम लोग अभी अनर्थ ग्रस्त है, महाप्रभु जी की कृपा करते को ग्रहण करते हुए उस लीला में डूबे, डूब करके हम लोग को कभी किसी दिन वृंदावन में अधिकार दिया जाए, यही प्रार्थना हम लोग
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पठानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम्ने गौरत्तिषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुखानुसुते देवी प्रणमामि हरि। हा देवी काकू हरकत गदयाद्यवाचा जाची निपत्त भूवि दंडवत उद्भटरती अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्व केतव गणी गण नंदिते अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दे वरम जटं जागुडरोचि सांविदध तम पट्टंबरस्य श्रिया बृंदारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कंद निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम तामो भक्त्या विघ्नापराधलक्ष्यै चित्त्वा सुकामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं बदामि राधाम भजामि राधाम भजामि राधाम अरविंद नेत्राम स्मरामि राधाम मधुरस्मिताभ्याम बदामि राधाम करुणा भरभ्रम मन्नास्ति गति निपाप शिष्य बृहद भगवतामृत हम लोग का बृहद भगवतामृत का पाठ चल रहा है। इसमें गोप कुमार द्वारका पहुंच गए हैं और उनसे उद्धव जी से और गोप कुमार में वार्तालाप चल रही है। प्रसंग था गोप कुमार को कहीं भी आत्मसंतोष तृप्ति नहीं हुई। द्वारका पे पहुंच गए, कृष्ण को पा भी लिया और कभी कभी वो बंसी भी बजाते हैं, गोचारण भी करते हैं, वृंदावन की लीला को भी दिखला देते हैं, तो भी इनको विरह लगा हुआ है और इनको संतोष ही नहीं होता। तो वही नारद जी कह रहे हैं, इसको क्यों नहीं संतोष होता, कैसी दुर्लभ वस्तु इसको मिल गई, अब बाकी कह रहा है इसको, और उसी में चल रही है जो कृष्ण रस का वृंदावन रस का रसिक है, उनको कभी भी द्वारका तक में भी कहीं भी आत्मसंतोष नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी, ये संभव पर नहीं। इसको बतलाते हुए नारद जी ब्रज की कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनको प्रणाम करने लगे, एक एक लीला को जन्म लीला से आरंभ करके सब लीलाओं को प्रणाम सूत्र में कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने इसी के ऊपर में दशम स्कंद की लीलाओं के प्रणाम के रूप में 108 मालाएं गुथी है, कृष्ण लीला स्तव इन्हीं लीलाओं के ऊपर। तो वही हम लोग चलते 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 मथुरा तक हम लोग कृष्ण के गोचारण दावालन पान इत्यादि तक पहुंचे थे। यहां पर आकर के हम लोग 21वें अध्याय की लीलाओं में हम लोग पहुंचे। नारद जी गोपियों के बंसी गीत को प्रणाम कर रहे हैं, तो उसी प्रसंग में हम लोग यहां तक पहुंच करके थोड़ा सोचा जे इस पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए, ये बंसी गीत है क्या आखिर चीज, कि इसको बंसी गीत कहते हैं, तो थोड़ा सा यद्यपि हम लोगों का अधिकार नहीं है, हम जानते हैं श्रोताओं में जो बैठे हैं इनमें प्राय जैसे कल कहा था ना वो सब मुनयो, तो ऐसे लोगों में भी कुछ अधिकारी हैं, किंतु मैं और अधिकांश श्रोता लोग हम लोगों का अधिकार नहीं, अधिकारी है ही नहीं है, ऐसा कहना अपराध हो जाएगा। जिनको लोग नहीं अधिकार है किंतु मुष्टि में है, कम है, वो लोग हम लोगों के प्रणम है। तभी इस लीला में क्या चीज है इसको दिखलाने के लिए हम लोगों ने थोड़े से संक्षेप रूप में विहंगम दृष्टि से इस पर दृष्टिपात हम लोगों ने अनुशीलन कर रहे हैं। कल तक हमने प्रारंभ में कुछ गोस्वामियों की शिक्षा जो हम कैसे इसमें प्रवेश करें, उसमें हम लोगों ने कुछ विचार किया अनर्थ दूर होने के लिए। बिना अनर्थ दूर हुए जो लोभ जैसा दिखता है वो लोभ नहीं बल्कि उत्पात है ना? वो लोभ नहीं है, वो है उत्पात। और जब अनर्थ निवृत्ति के बाद में जब आत्मा की वृत्ति कुछ उसमें से प्रकाशित होने लगे तब ऐसा समझा जाएगा जी हां उसको कुछ अब लोभ हुआ है। तो लोभ के भी बहुत से उसके दृष्टांत हैं, ये इसको लोभ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके पहले एक और चीज हम लोग विचार करें, जिसको ऐसी कथाओं में लोभ हुई है उसको हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसे बतला रहे हैं जो उनको कैसे साधन करना चाहिए। तो उसमें वो बतला रहे हैं जिन लोगों को ये लोभ हुआ है ब्रज की भक्ति के प्रति किसी भी रस में, वो तो बड़े भारी सौभाग्य है, दुर्लभ है जगत कोटि कोटि में से कोई बिरले हैं ऐसे जिनको लोभ हुआ। अब उन लोगों के लिए जिसको लोभ हो गया साधन न करें, भले ही लोभमयी श्रद्धा हो अथवा शास्त्र शासनमयी श्रद्धा हो, उत्पन्न होने पर भी यदि उपयुक्त शास्त्र हम साधन नहीं करेंगे तो वो बिरवा सूख जाएगा, अंकुर भी सूख जाएगा। पानी यदि न मिले, हवा न मिले या कोई चर जाए उसको, तीनों अवस्थाओं में ही वो नष्ट हो जाएगा। पानी का नहीं मिलना, सिंचना और हवा का नहीं मिलना ये साधन है, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। और अपराध जो है वो क्या है, उखाड़ देना, चर जाना एकदम समूल से। तीनों स्थितियों में ही वो वृत्ति जो बड़े सौभाग्य से उत्पन्न हुई थी वो नष्ट हो गई। अब यदि वो अंकुर हुआ लोभमयी श्रद्धा वाला तो उसके लिए श्रवण और कीर्तन आवश्यक है, क्या श्रवण करेगा, यही सब कथाएं। ये सब कथाएं नहीं सुनने से उसके लिए श्रवण के लिए पानी और सिंचने के लिए श्रवण कीर्तन ये सब होना चाहिए। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बतलाए हैं ये साधन पांच प्रकार के होते हैं ना? पांच प्रकार के वो होते हैं, निज अभीष्ट भावमयी ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साधन करने वालों के लिए जिनको साधन में प्रवेश होना है। और साधारण आदमी है तो वो क्या ने भैंस बैठ पबुरावे,
भैंस के आगे बीन
बजावे, अब भैंस बैठ पबुराती है, ऐसे हम लोगों की दशा। बीन माने बीना बजाते हैं और भैंस क्या करेगी, बैठ करके पागल मारेगी। तो जिनको इसमें लोभ हो गया एक मिनट का समय वो बर्बाद नहीं करेंगे, वो भाव भक्ति का है ना, शांति अव्यक्त काल। तो पहला है भावमयी, दूसरा है भाव निज अभिष्ट भाव संबंधी, तीसरा है अपने अभिष्ट संबंधी भावों के अनुकूल, और एक है भावों के अविरुद्ध जितने बातें हैं वो, और एक है विरुद्ध भाव के विरुद्ध। इन पांचों के प्रति हमारा कर्तव्य है। निज भावमय किसको कहा जाता है? जिसको किसी विशेष रागात्मिका प्रति, रागात्मिका व्यक्तियों के प्रति उनकी सेवा वासना को देखकर ऐसी सेवा वासना मेरी भी होती, चारों रोषों में से कोई एक भाव के प्रति, वो हो गया अभिष्ट भावमय। वो भावना हृदय में ये यही भाव स्थाई भाव के रूप में लेता है, कुछ दिनों के बाद, एक जन्म, दस जन्म, बीस जन्म के बाद, किंतु ये जरूर रहेगा, यही मुख्य चीज है। ये साध्य और साधन दोनों है, पहली स्थिति में साधन और दूसरी स्थिति में साध्य। और ये चार प्रकार के भाव हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और वात्सल्य। इसको यदि किसी को ऐसा लोभ हो गया है तो हीरा जवाहरात और मणियों की अपेक्षा कोटि गुण अधिक इसको भीतर में संजोग करके रखना पड़ेगा, कहीं हवा न लग जाए, नहीं तो कर्पूर की भांति उड़ जाएगी ये भावना। और उसको मने मने निज सिद्ध करिया भावन रात्रि दिने सेवे राधा कृष्ण रचरण, ये चीज है, इसको कहते हैं भावमयी। दूसरा होता है भाव संबंधी, भाव संबंधी मैंने, भाव संबंधी मैंने होता है जो उपादान कारण है इसका, उस भक्ति का, भावमयी भक्ति का उपादान कारण है। उपादान कारण क्या है? ऐसी ऐसी लीला कथाओं का श्रवण, ऐसे ऐसे रसिक भक्तों का संग, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आदि श्रवण, ये मैंने सभी विशेष करके साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वासी मुक्ति सभ्याय श्रवण, ये सब उस भक्ति के उपादान कारण है। इसलिए ये उपादान कारण भी दिखते हैं, किंतु यही उपादान कारण फिर भावमयी में बदल जाएगा। जैसे श्रवण कीर्तन करते हैं, अभी उपादान कारण है उसको उत्पन्न करने के लिए, किंतु यही श्रवण कीर्तन ही जब भावमयी हो जाएगी तब फिर यही वो सिद्ध हो भाव हो बोले दाता, अपने भावों के अनुकूल ये संबंधी जो भाव है, अपने अपने भावों के अनुकूल जो साधन है वही साधन होगा तब तो ये भाव संबंधी होगा। जैसे गुरुकरण, गुरुकरण करने के बाद में दीक्षा और शिक्षा विसंभ्रेण गुरु सेवा, ये दस अंग पहले के और इसके बाद में श्री धाम में रहना इत्यादि जितने भी भक्ति के अंग हैं वो इसके लिए अनुकूल हो उनमें से उनको ले ले, प्रतिकूल वाना लाने। तो ये सब हो गया उपादान कारण। और भक्ति के अनुकूल जो हैं भाव, जिनको निमित्त कारण कहते हैं, डायरेक्ट भक्ति नहीं किंतु उसके बिना भक्ति हो भी नहीं सकती है ना। जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, कार्तिक व्रत, इनका हम पालन करेंगे। वैदिक भक्ति के लिए ये तो वैदिक भक्ति के अंग हैं, किंतु श्रवण कीर्तन यदि कार्तिक महीने में जन्माष्टमी के समय में और एकादशी में यदि राधा कृष्ण के ऐसे ही भाव संबंधी दशमे स्कंद वाली लीला चरित इत्यादि का वर्णन और श्रवण इत्यादि होता है तो यही उपादान कारण बन जाएंगे ना? और जब इसलिए करते हैं कि हमको करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कहते हैं, तब तक ये वैदिक भक्ति बन जाएगी ना? अंग वही एक, किंतु भावना के अनुरूप में उसके भाव बदल जाने से वहां पर वैदिक भक्ति का अंग होने से यह निमित्त कारण हुआ ना? और जबकि वो भावमयी भक्ति के अंतर्गत में वो होकर के वैसे उसके अनुकूल हो जाता है, वो उपादान कारण हो जाए। है कठिन, किंतु समझने की चेष्टा करो तो भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति ऐसी सहज नहीं है जो झट प्रवेश कर दिया। ये रसगुल्ला नहीं है, मथुरा का पेड़ा नहीं, बस लिया खरीदा और बस मुख में दे दिया। समझना पड़ेगा खूब अच्छी तरह से, दिन रात एक करना पड़ेगा। यदि इन चीजों को जो बतला रहे हैं संक्षेप में हम बतला रहे हैं, किंतु यदि समझने की चेष्टा की जाए, नहीं समझ में आया फिर समझेंगे और इस काम में हम लग जाएंगे। प्राण जाय बरु वचन न जाय, संकल्प से हम च्युत नहीं, डू आर डाई, करो या मरो, ऐसा जब हो जाएगा तो क्यों नहीं भक्ति होगी। यशोदा जी का परिश्रम दे करके कृष्ण का चित्त द्रवित क्यों नहीं होगा, तब फिर कृपयासी तो सब वंदने हो जाएंगे, तब ये भी संभव हो जाएगा। जब हम लोग इतना बढ़े हैं आए हैं तो दोंगी तो और बढ़ जाएंगे, इसलिए हमेशा उत्साह के साथ में चलना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, और तीसरा है चौथा, अच्छा एकादशी कार्तिक जन्माष्टमी ये बतलाया, तुलसी की माला गले में देना, इससे क्या होता है? लकड़ी बांध लेने से नहीं, तुलसी की माला, गोपी चंदन धारण, शरीरों में कृष्ण नाम राधा नाम इत्यादि का अंकन, तुलसी सेवा, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी को दीप इत्यादि देना, मंदिर की परिक्रमा, वृंदावन में आना जाना, उनकी परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, ये सब अभिनिमित्त कारण है, किंतु भाव बदलते हैं ये भी उपादान कारण के रूप में चले जाएंगे। अच्छा अब तीसरा है, चौथा है, भाव के अविरुद्ध क्रियाएं कुछ ऐसी हैं, अपना भाव तो नहीं है किंतु विरुद्ध भी नहीं है, जैसे लिखा है 64 अंगों में, गो विप्र तुलसी अश्वत्थ ब्राह्मण पीपल, इनकी सेवा। मान लिया कि हमारे ये भाव के विरुद्ध नहीं है, पीपल का पेड़ आया तो उसको प्रणाम कर लिया तो हमारा हर्ज क्या है? वृंदावन का ब्रजवासी कोई है, ब्राह्मण है, एकांतिक भक्त नहीं है, हम लोगों का गौड़ीय वैष्णव के विचार जैसा होना चाहिए ना, राधा पक्षीय, ये सब एकांतिक पर की अभाव युक्त जो भगवान का भजन है उसमें वो नहीं है। वो सभी भावों को राधा वल्लभ भी हैं ठीक है, बिहारी जी भी ठीक हैं, मदन मोहन जी भी ठीक हैं, वो भी ठीक हैं, गोपेश्वर महादेव जी के यहां भी चले जाते हैं, और सब देवदत्ता देवी सब और दान दक्षिणा में भी चले जाते हैं, वो यज्ञ भी करा देते हैं, श्राद्ध इत्यादि भी ले लेते हैं, दान भी ले लेते हैं, किंतु कुछ पढ़े लिखे हैं, वृंदावन में रहते हैं, एक साधारण प्रतीत वृंदावन का मैं ब्रजवासी ये भाव, तो ऐसे ब्राह्मण को यदि हमने प्रणाम कर दिया तो इसमें हर्ज क्या है? ये अविरुद्ध भाव वाले कोई लाभ भी नहीं है, कुछ हानि भी नहीं है, कुछ तटस्थ जैसा है, तो भी हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बतलाया है, क्या बतलाया? गुरु गोष्ठे गोष्ठाल सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज व दंदी सरणे इत्यादि में कहा है ना, तो उनको सम्मान देना चाहिए ब्राह्मण लोगों को, उसे संतुष्ट हो जाते हैं। क्या है रहते तो है वृंदावन में, भले ये कांतिक रूप से नहीं हो करके रामचंद्र जी की आराधना करते हैं तो क्या है, जहां हमारे कृष्ण का ही तो वैभव है, उन्हीं का तो प्रकाश है। राम कोई कृष्ण से अलग थोड़े हैं, हमारे कृष्ण की एक वो भी लीला है, इसलिए उन लोगों को भी प्रणाम इत्यादि था ना? और वैष्णव की सेवा, वैष्णव की सेवा ये भी इसी के अंतर्गत लेते हैं, किंतु कहते हैं कि वैष्णव की सेवा इसमें लेने पर भी इसको अंदर में मत लो। ले लिया हमने कैटेगरी में विभाग करने के लिए ले लिया है, किंतु इसको ऐसे समझो कृष्ण की बंसी और कृष्ण दोनों हैं। गोपियों को या यशोदा मैया को किसके प्रति प्यार अधिक होता है, कृष्ण के प्रति ना बंसी के प्रति? यदि किसी का बंसी के प्रति आदर न रह करके कृष्ण के प्रति आदर हो तो इसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए कृष्ण से भी कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के प्रति ब्रजवासी भाव वाले लोगों के लिए अधिक भाव होता है। कृष्ण दही मक्खन खाएंगे और उसी को उन्होंने हणिया को उलाट दिया और दूध दही बह गए, बह गया दही। यशोदा जी आई, क्या किया तूने? बकवास कह गया, बड़ा भारी दुष्ट हो गया, बस कान मरोड़ दिया, ऐ करने लग गए। अरे यशोदे तू कैसी है, तुम्हारा दूध प्यारा है ना कृष्ण प्यारे हैं? यशोदा जी इसका उत्तर नहीं देंगी, रोष से देखेंगी, हैं? ये रोज जो झंडिया तोड़ता है दही फैला देता है, बस इतना ही कहेंगे, जवाब नहीं देंगे। किंतु वैष्णव लोग इसका उत्तर देंगे, ये कृष्ण से भी अधिक कृष्ण की प्यारी वस्तुओं के प्रति। एक महिला है अपने बच्चे को लेकर के आई, महिला का आदर सम्मान मत करो और उसके बच्चे को मिठाई उठाई देकर के जरा प्यार करके चुंबन कर दो, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। और लड़के को दुत्कार दो, उनको खूब सिंहासन पर बैठाओ, उनको अच्छा लगेगा। इसलिए कृष्ण से भी कृष्ण के जो प्रियजन है वैष्णव लोग हैं, कहते हैं ना कृष्ण हमारे प्राण वही है और उनका प्राण मैं, ऐसे वैष्णव की सेवा कृष्ण की सेवा से भी अधिक समझ करके करो यदि ऐसे भक्ति को चाहता है। और पांचवी चीज है, जो वृद्ध चीजें हैं उनको प्रत्याग करो। क्या चीज? अहम रहो उपासना, मैं ललिता हूं, मैं विशाखा हूं, मैं यशोदा हूं, मैं रूपमंजरी हूं, ये सब भाव एकदम दूर करो। ये भाव कभी भी नहीं आने पाए, अंग हो उपासना या इसके समान और चीजें। और द्वारका में प्रतीका रहना, यहां से छोड़ करके बीच बीच में द्वारका जाते हैं और रुक्मिणी इत्यादि का भी अर्चन पूजन करते हैं। राम सीता को भी रख लिया, राधा कृष्ण को भी रख लिया, रुक्मिणी और सत्यभामा और कृष्ण को भी रख लिया और सबकी पूजा करते हैं। बाल गोपाल को भी रख लिया और राधा कृष्ण को भी रख लिया और कृष्ण बलदेव को भी रख लिया, ये क्या होगा? भाव वृद्ध हो जाएगा सर, वो भक्ति गड़बड़ हो जाएगी, किसी में सिद्धि नहीं होगी। इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य एक जगह रहने पर भी स्पष्ट रूप में प्रकट रूप में एक जगह नहीं रहेगा, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे विरुद्ध जो चीजें हैं इनको दूर रखना पड़ेगा, जो अपने भावों के अनुकूल हो बस ऐसा ही साधन करना पड़ेगा। इस प्रकार से पांचों को समझ करके अनुकूल को ग्रहण, प्रतिकूल को वर्जन और जो भावमयी है उसको स्थायी भाव लाने की चेष्टा है और भाव संबंधी है उसको भी भावमयी में परिवर्तन कर दिया और निमित्त को भी उपादान कारण में प्रवर्तित कर दिया है, तब तो बस भक्ति एक जन्म का कुछ समय में ही ये हो सकती है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में आश्वासन दिया है श्रवण मात्र से ही कृष्ण तत्क्षण अवरुद्ध हृदय में हो जाते हैं। अवरुद्धते तत्र पृथ्वी सुश्रुवि तत्क्षणात्। तत्क्षणात् माने अखंड काल में जो दो चार दस बीस जन्मों में भी हो जाए। हम तो समझते हैं कि हम लोगों के लिए कोई गारंटी दिए एक लाख जन्म में आपका हो जाएगा, बड़े आनंद और आशा की बात है। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम लोगों को भजन करना चाहिए। भाई भजन करेंगे तब तो हमारा मनोरथ सिद्धि होगा। और इन सब हमारे गोस्वामी को विचारों को नहीं लेंगे, तनिक भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो खुरस्य धारा सीता दुरस्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। खुरे की धार की तरफ में कहीं इधर चला गया, पैर कट जाएगा, बस जख्मी हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा। खूब सावधानी के साथ में वैष्णवों का कहीं अपमान, कहीं कुछ अपराध, ये सब न हो जाए। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, अपराध तो लेते नहीं है, किंतु उनकी चरण की धूलियां जो है ना, चेले चपाटी है, वो बड़े दुरंत है। उनसे बच करके निकलना बड़ा भारी कठिन है। महाप्रभु से निकल जाएंगे किंतु स्वरूप दामोदर राय रामानंद और उनके नीचे जगदानंद पंडित जी और दामोदर पंडित जी कौन एक है ना, जो महाप्रभु जी को भी दस बातें सुना देते हैं। इन लोगों से निकल करके पार पाना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए सबको विचार करके हम लोग चलेंगे और भजन करने की चेष्टा करेंगे, तब फिर हम लोग इस रागात्मिका भक्ति के अनुगमन में रागा भक्ति के प्रति कुछ लोभमयी भावना हो सकती। कल तक हमने प्रायो बतंग विहगा मुनय बनस्मिन कृष्णे चितंग तदुतंग कलबेनु गीतम आरुचि दे द्रुम भुजानु रुचि प्रबालन श्रीमंत मिलितो त्रिशो। ओ इस वन के जितने भी पक्षी हैं ये पक्षी नहीं है, मानो ये ऋषि ही हैं, मुनि हैं। कल हमने इस चीज को बतलाया था। मुनि में भी विभाग किया दो दो एक बातें हम इस पर कह करके आगे चलेंगे। मुनि भी तीन प्रकार के होते हैं। ब्रह्म चिंताशील मुनि, मन के द्वारा ब्रह्म की चिंता कर, हमारा चेत तो आसन दो मरभर्ती के नहीं, चिंतन करने वाले ब्रह्म की चिंतन करने वाले मननशील मुनि। परमात्मा जो अपने हृदय में अंगुष्ठ परिमाण जो हमारे साक्षी हैं, कर्म फलों के नियंता है, इनका जो चिंतन करते हैं सब समय और वही हो जाने की चेष्टा करते हैं वो परमात्मा अनुशीलनकारी मुनि। और तीसरे होते हैं भगवत नाम रूप गुण लीला चिंतन करने वाले मुनि। इनमें से जो दो हैं वो दो में कुछ ऐसे हैं जो वेद रूपी तरु है और उसकी जो हजारों शाखाएं लाखों शाखाएं हैं उनमें कर्म मार्ग वाली जो शाखा है उसको वो छोड़ देते हैं, उनको फलों को भी छोड़ देते हैं। सेमल का फूल और पलाश का फूल और वो फल किस चीज का बदला मकाल, ये ऐसे के प्रति ये सब तुच्छ चीजें हैं। वैसे ये कर्म फल इसको तो छोड़ दिया है किंतु परमात्मा और ब्रह्म संबंधी अड्डालों पर ये झूल रहे थे। किंतु ये वृंदावन वाले जो मुनि हैं ये इसको भी छोड़ चुके हैं। इसमें से वो डाल जो भगवत अर्पित कर्म की है उसमें से जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा अंगीकार करते हैं रुचिर प्रवालन, जो छोटे छोटे कपोल अभी उगे हैं अंकुर उगे हैं बस उसी को भगवत अर्पित समझ करके जीवन निर्वाह के लिए कभी देखते हैं और किसी की तरफ में मिलता चक्षु आंखों को बंद कर दिया है, देखते ही नहीं है कहीं, न मन से न आत्मा से न शरीर से न आंख से न कान से न किसी भी इंद्रिय से। विगतान्न वाच विगत अन्य वाच वाच माने यहां पर समस्त इंद्रियों की समस्त क्रियाएं, उसे वे विगत हो गए। केवल कृष्ण अमरूप गुण लीला चिंतन में ही ये ध्यानस्थ है। ध्यानस्थ तो है इसलिए इनको मुनि कह रहे हैं, और प्राय शब्द का प्रयोग किया था इसलिए कि जो नत भक्त हैं वो क्या करेंगे, वो कृष्ण नाम सुनते ही आनंद से नित्य करने लगेंगे और गान करने लगेंगे कृष्ण नाम रूप का, और उसमें आत्मविभोर हो जाएगा। तो वृंदावन के जो संत लोग हैं वो कैसे हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण पारायण है, ये स्मरण कम है, ये स्मरण पंथी वालों के लिए मुनि कहा गया ना? इसको सेकंड नंबर में लाया, और श्रवण कीर्तन जो करने वाले हैं उनको लगाया मोर, सूप, सारिका, इन समय कोयल, इनमें लाया, और इनको लगाया किसमें, जो स्मरण पंथी को अधिक मानते हैं स्मरण भाव से, उसको प्रधान करके श्रवण और कीर्तन को दूसरे नंबर पर करते हैं, उनको वो मुनियों की लिया। वृंदावन में ये दोनों प्रकार के हैं, हमारा गौड़ीय मठ सवर्ण कीर्तन प्रधान है और बाकी जो है ना वो लोग स्मरण पंथी हैं, तो वो लोग उनको मुनि बनाए। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उस कहा जितने प्रकार के साध्य और साधन हैं वो उसमें हरिनाम जो है
नाम सबसे,
नाम भगवान का स्वरूप विजयते कृष्ण नाम संकीर्तन, और यदि कुछ है भी तो वो नाम के माध्यम से वो सब कुछ उसका मिल जाएगा। इसलिए नाम कीर्तन या भगवान नाम रूप कीर्तन इत्यादि के माध्यम से स्मरण उसके अनुगत में होकर के होगा, स्मरण अपने आ जाएगा। कीर्तन प्रभावे से काले निर्जन भजन, इसके पहले मत करो, बहुत ही इसमें सब सिद्धांत हैं, भरे पड़े अगाध सिद्धांत इनमें विचार है। इसलिए हम लोग स्मरण पंथी अकेले नहीं होने जाएंगे, हम लोग कीर्तन और श्रवण, श्रवण और कीर्तन, पहले श्रवण तब कीर्तन उसके बाद में स्मरण अपने आप आएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, यही साहजिक स्वाभाविक ये भजन का क्रम है। जद्यपन्या भक्ति कलौ कर्तव्या तदा कीर्तन भक्ति संयोगे ने एव कर्तव्या, उसके अंतर्गत रह करके अनुगत होकर के ही स्मरण इत्यादि होगा, और तब यही प्रभुपाद जी का यही विचार, भक्ति विनोद ठाकुर का यही विचार, हमारे सनातन गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि का स्पष्ट ऐसा आदेश और विचार। इन सबको जानने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 5 ग्रंथ हैं, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, बृहत भगवतामृत कना, और उज्ज्वल लीलमणि किरण, माधुर्य कादम्बिनी और राग वर्ण वचन। इनमें कुछ थोड़ा सा प्रवेश होना चाहिए भाई इन सब के लिए, अभी हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रत्येक जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी बच्चा पैदा करने का अधिकार है कि नहीं है, अवश्य एक दिन वो कर सकती हैं इच्छा करें, भले ही आज पैदा हुई, ऐसे जीव मात्र ही भगवत प्रेम का अधिकारी है। स्वरूपतः जीवेर स्वरूप है जरूर है अधिकार, कोई अपना अधिकार का उपयोग नहीं करता, कोई उसको पाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो जो प्रयास करते हैं वो धन्य है, उनका जीवन सार्थक है, जो प्रयास नहीं करते हैं वो दुर्भागा है। इसलिए ऐसे मुनि ये लोग भी धन्य हैं, ये कर्म शाखा ज्ञान शाखा को छोड़ करके वो जो निगम कल्पतरु है उस शाखा में एक भक्ति शाखा वो वृंदावन में जरा चली आई ना, कृपा करके ऐसे चली आई, अब इसी शाखा पर वो बैठे हैं, कौन बैठे हैं बिहार, और वहीं से कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण भी इनको देख रहे हैं। कृष्ण इसलिए कि कृष्ण कृपा करेंगे उनके ऊपर और वो वहां से निर्बाध गति से इनके तरफ में देखेंगे। इसलिए हमारा साधन ऐसा होना चाहिए हम उस साधन के माध्यम से कृष्ण को देख सकें और कृष्ण की भी करुणा हो जाए तो हमारे तरफ में वो देख सके। ऐसा ही हम लोगों का साधन होना चाहिए। तो मुनियों के संबंध में निर्णय करके बोले जैसे ये तो सनक सनंदन सनातन इत्यादि हैं यहाँ पर आए हैं भजन करने के लिए और मुरों का नित्य इत्यादि दे करके कैसे ये तन्मय कृष्ण की बंसी और कृष्ण का मुखारविंद दर्शन करके ये हम लोगों के लिए संभव पर नहीं होगा। ये कभी संभव ही नहीं है। यदि हम लोग जन्म ले पक्षी और उड़ उड़ करके जहां कृष्ण जाते हैं गोचारण के वहां जाएंगे, जब गृह में लौटते हैं तो पक्षी होकर वहां चले, रात हो गई तो यशोदा मैया के भवन में एक जगह कहीं पर बैठ जाएंगे और वहां पर से दर्शन करेंगे, फिर सवेरा हुआ कृष्ण चले तो हम भी चलेंगे। और पक्षी जन्म सबसे अच्छा है, उसकी क्या उसके दोष है इस पर उनका विचार है, वो तो भाव से चल रही है। इसलिए ऐसी भावना करते हुए लंबी आह छोड़ी, ये संभव नहीं, हताश हो गई, आकाश शून्य आकाश की तरफ में देखा, शून्य आकाश में पड़ते ही नजर गई नदियां भी हैं। हाँ अच्छा अच्छा, तो वो कुछ ऐसे हो करके सोच रही ये तो जन्म नहीं होगा, अभी श्लोक नहीं हुआ है, खाओ नेत्र से देखती कृष्ण सबके लिए सुलभ है। हठात नजर पड़ी नदियों पर, उनको कृष्ण का कोई भी संबंध चाहिए, जहां संबंध आया बस अपने को धिक्कार और वही संबंध सबसे अच्छा है, वही हमारा जन्म हो जाता है, ये भाव आता है। भाव आते ही हृदय में उनकी तरंगे उठी और ऐसी तरंगायित हो गई जो अपने भाव को जो छिपा करके अवहित्था के रूप में रखा था वो अपने आप वो उष्मा की भांति नीचे से एकदम निकल पड़ा, वो रहा नहीं। सबसे सुंदर भाव क्या है? गोपियों का भाव, किंतु ये तो भूल गई हैं। अब उसी के भाव, ये भाव नदियों में है, ये भाव पक्षियों में है, उत्तम भक्त का एक लक्षण है उसका
सर्वभूतेषु
यः पश्यति भगवत भावम्
आत्मनः
भगवत आत्मनेषु भगवतोत्तमः। अपना भाव और अपना कृष्ण के साथ संबंध प्रत्येक जीवों में लक्ष्य करता हूं, मैं सखा हूं तो सब जगह ये कृष्ण हमारे सखा हैं, इनके भी सबके सखा हैं। अपना भाव उसमें देखेंगे और भगवान में क्या देखेंगे? अखिल प्राणियों के भावों को दर्शन करेंगे, भगवान का भी उनके प्रति वैसा ही भाव दर्शन करेंगे, दोनों ऋषि प्रोकल एक दूसरा जैसा। इसी को चैतन्य चरितामृत में स्वरूप दामोदर के प्रति चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है, क्या जहां जहां पर उनका नेत्र पड़ता है
स्थावर जंगम
देखे ना देखे तार मूर्ति
सर्वत्र स्फुरिता।
तात्पर्य क्या? थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति माने क्या? जरा विचार किया, हम तो विचार किया तो हमको तो पहले कुछ मालूम नहीं होगा, किंतु हमने जो समझा वो गलत समझा कि क्या समझा अभी तक हमको ठीक पता नहीं। वैष्णव लोग हैं ये लोग विचार करके बतलाएंगे। हमने बहुत दिन चिंतन करने के बाद हमारे समझ में कुछ नहीं आया, किंतु विचार करना छोड़ा नहीं। जो विचार नहीं आता है समझ में तो उसके लिए जब तक कि वो नहीं समझ में आ जाएगा लाख लोगों से पूछेंगे, इधर करेंगे, विचार करेंगे, शास्त्र देखेंगे, कैसे न कैसे वो समाधान होना चाहिए। विचार करते करते एक दिन विचार आया, स्थावर जंगम देखे, देखते तो हैं किंतु
देखी
तार मूर्ति मन मूर्ति नहीं देखते। मूर्ति माने क्या? वो जिस रूप में अभी है, जैसे पेड़, कहां का पेड़? महाप्रभु देख रहे हैं पुरी में, चटक को देख रहे हैं, बालू की एक ढेर को देख रहे हैं, तो उस बालू के ढेर को तो देखा, किंतु बालू के ढेर को उसके बालू के रूप में नहीं देखा, देखा गोवर्धन के रूप में, इष्ट देव स्फूर्ति, और उस गोवर्धन में देखा कृष्ण के पदचिन्ह इत्यादि, और उसमें देखा कृष्ण के बैठने के लिए सिंहासन, और उसमें से झरना मानसी गंगा इत्यादि को घूम भाव मित्र से सत्य करके भाव विपन कर जा रहे हैं वृंदावन में। राउर किला के बाद में गंभीर जंगल पड़ता है, जब रेल से जब जाते हैं कितना गंभीर जंगल, अभी भी उसमें बाघ हाथी इत्यादि सब है। महाप्रभु चले जा रहे, चले जा रहे, वन को देखा, देखा क्या, अरे ये तो वृंदावन में पहुंच गया, देखा साल के बड़े बड़े वृक्षों को, तो साल के वृक्षों को नहीं देखा, केवल वृक्ष देखा, किंतु उसका मूर्ति जी साल ने देखा, कदम्ब देखा, खूब हरे हरे वृक्षों को देखा तो देखा जी ये तो कमाल, और पक्षियों को देखा तो देखा तो मोर, या मोर साध हो भी सकता हो, बस देख करके एकदम भाव देखा, जब वृंदावन आ गया और कृष्ण को देखा, कोई नदी देखा उसका पानी देखा हरा, बस ये जमुना जी है, जमुना में खूब पड़े, बस ऐसे ही मूर्ति था, उनको देखा तो ये है, किंतु उनको उस रूप में नहीं देख करके देखा, वृंदावन की स्मृति हो गई, कृष्ण की लीला की स्मृति हो गई, और बस एकदम भाव में तन गए। ऐसे ही यहां पर बतला रहे हैं कि गोपियों का भी भाव बतला रहा हूं, गोपियां वहां पर जो देख रही हैं अपने भाव रूपी नेत्र से, घर में तो बातचीत कर रही हैं, किंतु देख क्या रही हैं, वन में वो सब देख रही हैं, जहां जहां उनका कोई भी संबंध कृष्ण से मिला और बस उसी में विभावित होकर के उसी का महात्म्य वो वर्णन करने लगी। ये भाव जो दास सख्य वात्सल्य और मधुर का है उन वस्तुओं में नहीं है, है किसमें, इसको कहते हैं उद्दीपना, उन वस्तुओं को कहते हैं उद्दीपना, उस दीपना को देखा और उद्दीपना से स्फूर्ति होकर के एकदम भावमयी एकदम बन गई। भक्ति में ऐसा ही होना चाहिए, जिस भक्ति में आसक्ति नहीं उद्दीपना नहीं वो भक्ति अभी बहुत नीचे स्तर की है, ऐसी उद्दीपना होनी चाहिए। अब इनको देख करके उद्दीपना हुई क्या, नदी के तरफ में देखा वो कृष्ण निकट आ गए हैं, हमारे प्यारे कृष्ण, कुछ ऊंची ऊंचा स्थल है, और वहां पर देखा जी गायें इधर उधर सब बिदक गई हैं, कोई यहां कोई वहां सब गायें चली गई, बस बंसी ली और उसमें कोई स्वर उसमें उन्होंने आवाज किया गायों को बुलाने के लिए। अब वो स्वर सुन करके अब गायें आई कि नहीं आई हैं, अब उसका उनका विचार में देख रहे हैं ये कृष्ण खड़े हो गए हैं जमुना के तट पर, और वो तट कुछ ऊपर है, और बंसी बजाया भाव में विभोर हो गई, देखा क्या, अरे ये जमुना मानसी गंगा ये तो उनकी प्रेयसियां हैं, जमुना जी की उत्प्रेक्षा की प्रेयसियों से उत्प्रेक्षा करके कहती हैं, न दस तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भिक्न भीगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे गृहंति पाद जुगलम कमलोप। नदिया देख करके जा रही थी अपने पति से मिलने के लिए, हाथों में कुछ उपायन है, सोने के थाल में कमल के पुष्प चंदन घिस करके ना? और सब चीजें पानी एक पंच पात्र में रख दिया है, माने आसन अर्घ पाद्य अर्घ पुष्पमाल्य और अब समर्पण करने के लिए अंतिम पुष्पांजलि के लिए भर करके रख दिया, और ऐसे हाथ पर रखा है और जा रही है, चिंता करती हुई जा रही अपने पति के पास। पति कौन है? समुद्र है, उसके ताप में बड़ी वेग से चली जा रही है। वेग से तो जाती है ना, देरी विलंब न हो जाए, बड़ी वेग से जा रही है। और इसी बीच में कृष्ण की बंसी की तान सुनाई पड़ी। तदा माने तब, तब माने कब, ये जो बतलाया कब, जाने का भाव बतलाया ये तदा। तदा तदुप धार्य मुकुंद गीत, मुकुंद का गीत उनके कानों में पड़ा। कैसे? बंसी के द्वारा पड़ा। मुकुंद किस लिए कहा? मुक्तिं ददाति थी मुकुंदा, ये ब्रजवासियों को यह अर्थ अच्छा नहीं लगा। मुक्ति सुखम कुत्सितम कृत्वा प्रेमानंदम ददाति इति मुकुंद, मुक्ति को तुच्छ बनाकर, तुच्छ बेकार ये क्या चीज लेंगे, हमको तो प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए कृष्ण से हमको प्रेम मिलेगा और कृष्ण प्रेम देते हैं, द माने देना, ऐसे कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। कुछ लोगों को यह स्वीकार होने पर भी, जो गोपी भावाश्रित हैं उनके लिए ये ठीक है, क्योंकि वो प्रेम उनके पास में है ही है, उनको क्या लेना देना है, इसलिए उनका अर्थ होगा अपना कुंदैव प्रस्फुटितम मुखम जस्य, कुंद के समान सब समय उनका मुखारविंद विकसित है, मुस्कान मुखों पर ओठों पर दोनों अधरों पर खिल रही है, कुछ बंकिम भाव है, त्रिभंग ललित रूप से खड़े हैं, ऐसे जो कृष्ण वहां पर खड़े हैं ना, ऐसे मुकुंद कुंद की भांति सब समय खिले रहते हैं जिनका, ऐसे मुकुंद गीत और भी स्वर मूर्छना आलाप इत्यादि के माध्यम से जो बजा रहे हैं, सीधा उनके कानों से प्रवेश करके हृदय को भी चोरी करके ले करके चला रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वर और भंगी के साथ में मुख से वो बजा रहे हैं, बस थमक गई। थमक जाना मैंने क्या,
रुक गई,
रुक जा, रुक जा, बंसी ने कहा जो रुक जा, कहां जा रही है, बस वो रुक गई। रुक करके इधर उधर देखा, अरे ये तो निकट ही में बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर जी खड़े हैं, देखिए, और इधर से बंसी की आवाज, मानो उनका भी हृदय चोरी कर करके निकाल ले आई बंसी, और वो जो जा रही थी वो जा करके ठिठक करके, और उधर जाना उनका बंद हो गया, बीच से वो लौट पड़ी। ये भी चिंता नहीं हुई, ये लौटना उचित नहीं है, पति को छोड़ करके और दूसरे के पास में जाना तो उचित नहीं, किंतु वो जो चोरी कर लिया था ना मन, इसलिए चिंता नहीं कर सकी, विवेक और अविवेक उनके पास में कुछ नहीं था जिसके द्वारा वो चिंता कर सके, विवेक भी चला गया, विवेक भी भूल लिया, जो कुछ था उनका सभी कुछ मन से तो विचार करेंगे बुद्धि से, वो तो सब ले लिया, इसलिए कुछ विचार ना कर सकी, बेचारी ठगी हुई सी हरिणों जैसे एकदम लौट पड़ी, उधर से लौटी और उधर से ऊपर से उनका वेग आ रहा है, अब वो नीचे वाला वेग उधर जा रहा है और नीचे वाला ऊपर आ रहा है, लौट रहा है ना कृष्ण की तरफ में, इसलिए वहां पर पानी घूमने लग गया। इसको कहते हैं कि मनोभव भग्न, वो जो बंसी की तान उन्होंने सुना और लक्षित उनका जो कामदेव मनमत कोटि मनमत मनमत कृष्ण है, और मुकुंद का जैसा वर्णन किया वो रूप दिखा, बस सब कुछ भूल गई, वो नीचे से आगे बढ़ने लगी और ऊपर से आ रहा है, पानी स्फीत हो गया, स्फीत होकर के क्या हुआ, घूमने लग गया। और पहले हमने बतलाया कोई अपना कोई व्यक्ति प्रिय मिले तो उसका स्वागत होना चाहिए ना, आसन
पहले आचमन आसन पाद्य अर्घ, इसके बाद में मधुपर्क इत्यादि देंगे, पुष्प माल्य देंगे, इसके बाद में अर्पण करेंगे वो। अब जमुना जी जब लौट पड़ी ना, तो धीरे धीरे लौटी तो पानी बढ़ने लग गया, तो वो पानी जो था कृष्ण के चरण कमलों तक आया, ये उनका पाद्य हुआ। पाद्य देकर के खूब धो लिया अच्छी तरह, और धो करके मानो पान कर रही, प्रेम में अधीर हो गए, और वो प्रेम बढ़ा ना? वो जो भग्न वेग था उधर से तो भग्न हो गया, किंतु जब भग्न होगा तो होगा क्या, ऊपर वाला तो आएगा ही, स्फीत होने लग गया। अब वो कमल जो था उसमें जब पानी बढ़ा, तो कमल की तो डंडी होती है, वो कमल की डंडी सीमित होती है, तो वो पानी जहां तक बढ़ा तो वहां तक तो वो बढ़ा कुछ, किंतु अंत में इतना पानी बढ़ गया वो टूट गया, अपने कमल को तोड़ लिया यमुना जी ने, तोड़ करके उपहार के स्वरूप रख लिया ना? और उपहार लेकर के अपनी भुजाओं से, उर्मी रूपी भुजा से कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो कुछ बात होती है, एक तो यदि उसको ग्रहण कर ले लिया तो बस हो गया, और उस पर भी उसकी उपेक्षा यदि कोई करे, दे दिया अपने को सर्वस्व दे दिया ने? और भी नहीं प्रसन्न है तो क्या करेगा, उनके चरणों में खुद ही गिर जाएगा। अभी तो छोड़ दो, अभी चल रहा है, अभी मत उन्हें तो चुप में बिना, जब जरूरत होगी तो बतला। क्या बतला रहा,
उपहार दे तो ग्रहण करते ठीक है, नहीं ग्रहण करने पर
कृष्ण ने मानो कुछ थोड़ी सी उपेक्षा कर दी, कृष्ण जा खड़े थे वहीं पर रह गए, भाई इतना किया तो भी प्रसन्न नहीं हुए, पाद्य दिया तो भी प्रसन्न नहीं हुए, उपहार भी दे दिया तो भी नहीं हुआ। अब किंतु उमंग बढ़ रही है, प्रेम प्रवृद्ध, प्रेम तो बढ़ा वो, अर्थात वो जो धारा थी उनका पानी वो बढ़ा, बढ़ करके कहां तक गया, कृष्ण के वक्षस्थल तक पहुंच गया। माने जमुना जी ने देखा इसे काम नहीं चलना चाहता, ये नहीं मानते ठर, बस दोनों भुजाओं रूपी बढ़ करके एकदम यहां तक पहुंच करके और उनको ऐसे पकड़ लिया। माना अब कृष्ण जाएंगे कहां, बस उनके वशीभूत हो गए, वो इतना इनका सौभाग्य, हमारे लिए क्या संभव होगा, तो उसी को कह रहे हैं आलिंगन स्थगित उर्म भुजाई मुरारे। मुरारे शब्द क्यों कहा, अरे मूर नामक राक्षस को मारने के कारण ये मुरारी इनका नाम हुआ, तो यहां इस अरस में इनकी क्या उपयोगिता है, मुरारी शब्द का ब्रह्मवैवर्त में या बराह पुराण में, शायद बराह पुराण में एक उल्लेख है, ये नारद ऋषि और पुलस्त्य ऋषि में कुछ या किसी में वार्तालाप हो रही है, तो पुलस्त्य इत्यादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा इनका नाम मुरारे क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, जरा हमको कृपा करके बतलाइए। लोग मुरारी मुरारी बहुत लोग करते, उन्होंने किसी युग में सत्य युग में कश्यप की स्त्री दनु है ना, दनु है ना, कश्यप की स्त्री तेरे पत्नियों से एक, देखा जी देवता लोग दानवों को बहुत तबाह करते हैं, कष्ट देते हैं, और हमारे लड़कों को जब कष्ट देते हैं तो हमको भी बड़ा दुख होता है। एक ऐसा कोई पुत्र हो जो देवताओं को जरा शिक्षा दे दे और उनको अभी दमन कर दे तो हमारा हृदय उल्लसित हो उठेगा। उसने कठोर तपस्या की, प्रभु हमको एक ऐसा पुत्र हो, अपने पति से कहा हमको एक ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को भी
शिक्षा दे सके, उनको हरा सके। सब समय हमारे पुत्र असहाय बने रहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति न हो, इसलिए उन्होंने तपस्या। अच्छा एवं अस्तु, तुम तपस्या करो भगवान की, ब्रह्मा की, या भगवान की किसको कहा। उन्होंने तपस्या किया तो उससे मूर नामक का एक लड़का पैदा होने पर उन्होंने कहा बेटा तुमको हमने इसलिए जन्म दिया है इनको परास्त करना है, तो तुम क्या करो। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की बहुत हजारों वर्षों तक, मैं देवताओं को भी परास्त कर सकूं, हमसे कोई अजेय न रह जाए, मैं सबको जीत लूं। बहुत दिन तपस्या करने के बाद कठोर प्रसन्न होकर के बरम ब्रूही तो उन्होंने कहा जे बर मांगा, क्या बर चाहिए, तो बर ऐसा दें, बर ऐसा दें जिसके ऊपर मैं अपनी हथेली रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। बाढ़म बाढ़म, बाढ़म मैने
यो बाढ़म इसी काल
ये हो, ठीक ऐसा ही होगा। इसके भाई सुन तो लो, हो सकता भी इसका भी, बामन पुराण का ये उपाख्यान है, ऐसा हो। बस ऐसा हुआ, वो लौट करके फिर आ गया अपने समाज में, आप देवताओं के लिए अजब बैठ गया, जम के पास में सबसे पहले पहुंचा, ये बड़े तेज है, इनको यदि परास्त करते, इंद्र इत्यादि को परास्त करना मेरे लिए कोई कठिन बात नहीं है। तो वो हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए, तुमसे युद्ध नहीं कराया था, नहीं आपसे मैं क्या युद्ध करूंगा, मैं तुच्छ आदमी, आप नारायण के पास में चले जाए वो आपकी इच्छा को पूर्ण कर दे। तो नारायण कहां है, तो वैसे तो भाई उनका ठिकाना कुछ नहीं, सर्वत्र है, तो अभी क्षीर सागर में रहते हैं या बरबुदसाई में रहते हैं, उन्हीं को बतलाया होगा, वहां पर तो इनके लिए जाना तो संभव नहीं, इसलिए उनको बता दिया ये नारायण के पास में गया। नारायण ने कहा जैसे किस लिए आया यहां, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा, तो मैं यहां आया आपसे युद्ध करने के लिए, तो तेरे जैसे लोगों से मैं क्या युद्ध करूंगा, तू तो डर के मारे कांप रहा है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तुम्हारे जैसे भीतु आदमी से मैं युद्ध नहीं करता, हमारा शरीर धड़क रहा है सचमुच से देखा, और जहां देखा तहां बस जल करके खा गए। मूर का उपक्रम है। अब ब्रह्म विवाद में कहा गया तो इससे इसका संबंध क्या, यहां जल करके खाक हो गया, नहीं थोड़ा सा संबंध यो है, कृष्ण नारायण के समय ना, कौन कहा है ये,
नारायण
गर्गाचार्य ने कहा, ये नारायण के, नारायण का गुण इनमें संक्रमित होता है, तो इसलिए ये नारायण ही है। अब नारायण ही है तो क्या हो गया, कहते हैं कि भाई मूल शब्द का शब्द कोश में विश्व शब्द अमर कोश में या इसमें पांच अर्थ लिखे हैं, वो पांच अर्थ हैं, मैंने इसमें हमको याद नहीं था इसलिए इसको लिख दिया, मूरह क्लेशो संतापे काम भोगे चक कर्मणाम दैत्य भेदे ही अरिस्तेषां मुरारिस्तेन प्रकृतिता। अर्थात मूर किसको कहते हैं, क्लेश को, अच्छा दूसरा हुआ संताप, जितने प्रकार के संताप हैं, और तीसरा हुआ काम भोग, काम भोग करने की लालसा जिसमें हो वे भी मूर है, और च कर्मणाम, और कर्मों का फल भोग करने के लिए जो उत्तावले बने रहते हैं ये सब दैत्य हैं और ये मूर है, इनका जो विनाश करने वाला है वो मुरारे है। तो यहां पर किस लिए लिया है, वो काम का संबंध ले लो, अब ये जमुना के हृदय में या गोपियों के हृदय में काम रूपी जो अरी है, अपने दर्शन से, अपने चरणों की स्पर्श से, अपने हस्त स्पर्श से, कृपा से इनको वो मूर्ख जो काम रूपी है उसको दूर करने वाले हैं। इसलिए ये मुरारी का यहाँ पर अर्थ लिया है। अपने स्मित हास्य से, बंसी वादन से उनके इस काम के भाव को भी दूर करना। मत जलाओ भाई, नहीं तो मुख जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे। उनका जो काम रूपी जो ताप था, उनको जो वस्तक्षल से धारण किया, काम ताप को सदा के लिए उन्होंने दूर कर दिया। विजहो तापम, ताप को सदा के लिए दूर कर दिया। उनका हृदय सुशीतल हो गया और वो कृष्ण के चरणों में एकदम लिपट गई। अब ये कह रही हैं मुमुहुर गृहणंति पाद जुगलम कमल उपहारा। अब वो कमल उपहार वहां पर चढ़ा हुआ है और पाद्य भी देकर के धो दिया है और हृदय से भी उनको ग्रहण कर लिया। वो इतना सौभाग्य हमें होगा, हाय 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 सखीरी, ऐसा संभव पर नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों को तो चरण में बहुत दूर से पहुंच जाए और उनकी स्मृति भी आ जाए तो बहुत है। हमारे पति लोग, हमारी सास ससुरी, ये सब इतनी अधिक विद्वेषी हैं, हम लोगों को तो ये देखने मात्र से ही उत्पीड़ित करेंगे और चले जाएंगे। इसलिए सब ने लंबी आंख लेकर के और तब आकाश की तरफ में देखती हैं, ने? उसके लिए कह रही हैं दृष्ट्वा तपे ब्रजपशून सह राम गोपी संचारयन्तुम वेणु मुदीरयन्तम प्रेम विद्ध उदित कुसुमावली भी सत्कुरुपधात सब वपुषाम्बुद आत्मपत्र। आकाश की तरफ में देखा, आकाश में देखते हैं, अरे ये कृष्ण के तो ये सखा हैं, कैसे सखा हैं और उनके प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं। अब अगले दिन हम लोग इसका वर्णन करेंगे।
वैराग्यजुगुभक्तिर संप्रयत्ने अपायन्मानुमभिक्षु मंदम कृपां बुधिरिजा परदुःखदुःखे सनातनस्तं प्रभुमाश्रयं श्रीचैतन्यमनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महीं ददाति यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करोभिनेदु भूतविदयं यत्किं करिष्यसि भवता भक्ताभिमानी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौ यस्यावतारस्मिते विश्वानुजाय तत्केलितुं मौनं मार्जनि।
विद्य दशा को प्राप्त तो फिर इसका आस्वादन करने वाले को बात भी क्या। और ये उसकी श्लोक उसे भी ऊपर वाला है, अनुराग उसके बाद में भाव, उसके बाद में महाभाव, उसके बाद ऊपर का वहां जो एक श्लोक में आया था प्रायो बतांग विहगाम नयो कनिष्म, उसमें है ना कि आरुह्य दे दुर्भुजान रुचिर अप प्रवाह। आरुह्य माने दो अप, एक अप को मैं छोड़ दिया, दूर से ही छोड़ दिया। आरुह्य माने एक तो होता है उस पर बैठ कर आरोहण कर, और एक होता है आरुह्य माने उसको अतिक्रम करके उसे ऊपर जाकर उसको छोड़ करके उसको अतिक्रम करके ऊपर। वो लोग वो जो मुनि हैं उन सब स्थितियों को अतिक्रम करके उन भुजाओं को, ध्रुव भुजाओं को, ध्रुव के जो डालियां हैं उनको अतिक्रम करके उससे ऊपर चले गए। कौन वो जो वेद वाला जो
1100 कितने शाखाएं हैं, उन सबको अतिक्रम करके ऊपर में चले गए और तभी उनकी प्रशंसा नहीं की, मयूरों की, और उनको तो प्रशंसा की मयूर कोकिल सुर और इन लोगों को सनक सनंदन के उस श्रेणी में रख करके और इनको बतला दिया मौनी और मुनि बतलाए और वो लोग भक्त कोटि में आ गए। अब उससे भी स्थिति ये ऊपर क्रमशः चलता चला जाए। मान लिया कि पहले को यदि प्रेम रखो तो दूसरे श्लोक से जब आरंभ करो प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, ये महाभाव की स्थिति है। इस लोक समाज में चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों का की अवतारणा नहीं करते, बस 2.5 लोगों कितना 3.5 लोगों की हार इसकी मर्यादा समझते हैं। हम लोग क्या समझेंगे, प्रेम ही नहीं समझते हैं, भाव ही नहीं समझते हैं, निष्ठा तक भी नहीं समझ में आता है कि निष्ठा किसको कर, निश्चला बुद्धि ही नहीं हो पाती। कभी एक प्रसंग चल रहा है, हम लोग उसमें चल रहे हैं, यदि किसी का परम सौभाग्य होगा तो उसकी एक हवा लग जाएगी तो भी तो शरीर को शीतल हो ही जाएगा, बस इतना ही, या वर्षा गिरी उसका एक दो बूंद कहीं लग गया तो भी कल्याण। इसलिए हम लोग इसका अनुशीलन कर रहे हैं। तो गोपियों की भावों की चिंता करके, गोपियों के नदियों की, उनकी महत्ता का चिंतन करके कुछ स्तब्ध हो गए। तो इतना ही लोगों के द्वारा संभव है, ये कैसे संभव है? हम लोग नदियां नदियों को संबंध में एक ने तो ये कहा कमल रूपि उपहार को लेकर के चरणों में सर्वस्व निवेदन करके और कितना तक पानी हो करके उनका आलिंगन कर दिया। ये हम लोगों के द्वारा कहां संभव, कहां वो मिलेंगे, मिलना उनका बड़ा दुष्कर। दूसरी सखी कह रही है, अरे सखी तू तो एक दिन की बात कह रही है, एक दिन की बात तुमने देखा और ऐसा कर दिया कि यमुना जी एक दिन उनकी तरंग रूपी हाथों से उनके चरणों में कमल पुष्प। हम तो देखते हैं कि ये जो नदियां हैं कृष्ण के प्रति पहले से ही अनुरागपति, इनका ये पूर्वराग इत्यादि कुछ नहीं, इनका नित्य ही कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग है और वही इनसे इनका मिलन होता है यमुना से। हम तो देखते हैं ना, कृष्ण कभी गोचारण करने के लिए आए, दूर में है झट दूत भेज दिया, अपना दूत उनके पास है, आपके लिए प्रतीक्षा हो रही है। तो यह दूत कौन, यमुना जी में जो कमल है उनका जो सुगंध है वो हवा में मिला, हवा दूत बना और लेकर के कहां पहुंच गया, कृष्ण के पास में पहुंच गया। माने ये यमुना जी संवाद दे रही हैं, आपके मिलने के लिए हम उत्कंठित हो रही हैं। आप अब इससे क्या हुआ, कृष्ण ने देखा जब वो यमुना में, यमुना मालूम है निकट है, सुंदर फूल खिले हैं, पानी खूब सुशीतल, अभी गर्मी का समय, सब सखाओं और बच्चों को लेकर के हम चले और कृष्ण हम स्नान करने खिलाए करने सखाओं के साथ में पानी पीने बछड़ों को भी पानी पिलाए और उस वहीं पर सुशीतल छाया में हम विश्राम भी करेंगे। दूसरी बात, उसमें कमल है ना, कमल पर भौरे बैठे और भौरे भनभन करते हुए उड़े, एक तो सुगंध लेकर के भी और मानो यमुना जी ने संदेश उनको दिया, जाओ तो तुम्हारे जैसे ही होंगे, अपने जैसा श्याम जिसको देखना, तुम्हारा गुण कुछ कुछ उनमें भी संक्रम है, जैसे तुम हो ना, नित नए नए फूलों को बैठते हो, ऐसे ही वो होंगे। तुम जाकर के उनको संदेश देना, जो पासी में यमुना जी तुम्हारे लिए वो भन भन उठता हुआ मानो वो जमुना जी का संदेश लेकर के कृष्ण के पास, और फिर वो कृष्ण संदेश पाते हैं और रह सकते हैं भले बस जहां से तहां वहीं, और आकर के कपड़े उतारे और सखाओं के साथ में बस जमुना जी में विहार करने लगे। सखियों के साथ भी यमुना में कृष्ण के विहार का वर्णन बहुत स्थलों में आया है। वो यमुना जी का कितना सौभाग्य कि ऐसा उनको उपलब्ध है, कृष्ण से मिलन हम लोगों के लिए संभव है। ऐसा यमुना जी का सौभाग्य विचार करके हताश हो गई, और हताश होकर के फिर आकाश की तरफ में देख करके लंबी आह खींची। अरे देखा, ऊपर में देखा क्या, भाव में देखा। दूसरी बात एक और होना, जी गोस्वामी जी कहते हैं गोपियों का यह भाव नदियों के संबंध में कुछ प्रकट हो गया। उनका जो मधुर रस का जो विचार था, भाव था, उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा, ये बात प्रकट हो गई। किंतु बात लज्जा की है, उनसे मिलने की बात कही गई, इसलिए अब उनको छिपाना चाहती हूं। उस छिपाने के लिए श्रृंगार रस नीचे उतर करके सख रस में आ गई, और श्रृंगार रस के द्वारा सख रस के द्वारा श्रृंगार रस को ढकने लगे। कहीं जा रहे हैं, हवा का झोंका आया, घूंघट में थोड़ा सा ऊपर उठ गया, बाएं हाथ से उसको फिर जल्दी से ठीक कर दिया। ठीक ऐसे ही उनका यह भाव गोपनीय हृदय में रखने जो, और यहां पर प्रकाशित हो गया सब लोगों के सामने, इसलिए उस चीज को ढकने के लिए यह दूसरे भावों की अवतारणा करके उसको छिपाने की चेष्टा करने लगे। इसलिए कहते हैं त्रिष्टा तपे बज पशुन सह राम गोप संचारे अंतमनु दिलम देवानी प्रेम प्रवृत्त उदित कुसुम आवली भी सख्युर्बधा सब बपुषाम आतपथ्यम दृष्ट्वा। भाव नेत्र से देख रही है, क्या देख रही हैं? अब दृष्टा का दो बार लगा दो, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, अतः तो गोपियां तो भाव नेत्र से देख रही हैं, क्या देख रही हैं कि श्याम सुंदर का वन में एक और सखा है। वो सखा कौन है जो कृष्ण के लिए मिलने के लिए सब समय आतुर रहता है? वो है मैं। वो सखा कैसे बन गया? इसलिए बन गया जो श्याम सुंदर श्याम है वो भी है श्याम। लोग तुलना देते हैं नवजलधर श्याम, नवजलधर श्याम। कृष्ण कैसे हैं श्याम? तो नौ जलधर के समान है, जलद नए जिसमें पानी है, ऐसे मेघ के समान कृष्ण श्याम सुंदर। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, वो भी कृष्ण की देखा देखी सखा है, विद्युत मानो वो पहन लिया। कृष्ण बंसी बजाते हैं, वो बंसी बजाने के मिस बहाने बंसी से वो गर्जन करता है। इस तरह से कृष्ण भी बड़े सरस हैं, ये भी बड़ा सरस है। कृष्ण बड़े चंचल हैं, और मैं कैसा होता है, स्थिर होता है, वो भी बड़ा चंचल है। इस तरह से बहुत सी दोनों में तुलनात्मक भाव है, इसलिए दोनों में सख भाव हो गया। अब वो दृष्टवा अम्बुद, वो जो अम्बुद, अम्बुद माने अम्बु को देने वाला, अम्बु माने पानी, पानी को बरसाने वाले को अम्बुद, वो अम्बु देखकर क्या देखा उसने, दृष्ट्वा तपे आतप, आतप माने गर्मी का समय है, दोपहरी का समय है, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है, कहीं भी छाया टाया नहीं है, कुछ छाया से चले आए हैं और छाया की तरफ। कृष्ण के साथ में ब्रज पशु न सह, ब्रज के पशु हैं माने गायें हैं, महिष्य हैं और सब हैं, और साथ साथ में राम और दूसरे गोपाल सखा हैं, राम गोपाई, राम आदि सुबल सिदाम इत्यादि सब सुकुमार लड़के हैं और बच्चे ये सब हैं। देखकर मैंने वो सखा इस समय बड़ी विपत्ति में है, सहानुभूति इसका तात्पर्य देकर, कहीं इस गर्मी में छाया कहीं नहीं और इनको कष्ट हो रहा है, जमीन गर्म है, बालू वृंदावन तो ऐसे ही ब्रज में कहीं कहीं पर रेतीली जमीन है, इसलिए इनके पैर कहाँ रखेंगे, पशु भी वैसे पानी के लिए मुश्किल है, पानी कम मिलता है, इसलिए देख करके। और देखा क्या, एक चीज और लग चुकी है कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, जब चीज सखा को सहायता के लिए बुलाया जाता है ना, मानो वो बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं, बेनु गीत के द्वारा, कौन गीत के द्वारा आह्वान कर रहे हैं, मल्लार राग, मल्लार राग माने होता है मेघों को बुलाना, तो मेघों को मल्लार राग से मानो मेघों का आह्वान कर रहे हैं और उसको सुन करके मेघ सब दौड़ करके ये हमारे सखा हमको बुला रहे हैं, ऐसा देख करके संचार यंत्र अनुबेणु मुदीर यंत्र चारे यंत्र गायों को संचालन करते हुए चरा रहे हैं इधर, और छाया इत्यादि नहीं, और वेणु को बजा रहे हैं, कैसे वेणु बजाए, अनु गायों के पीछे चल रहे हैं और गर्मी देखा उसके अनु, ऐसा भी अर्थ और एक अर्थ पीछे बतलाऊंगा, अनु का अर्थ होता है निरंतर बार बार बजा रहे हैं, और तीसरा अर्थ अनु मैंने जिधर जिधर मेघ हैं उधर ही उधर ही तरफ में बजा रहे हैं उनको देख करके। तो ये कौन है भाई यहां गड़बड़ कर रहा है, उनको हाथ जोड़ करके कहिए। तो संचारयंतम अनु वेणु मुदीरयंतम, वेणु को उन्होंने बजाया, निरंतर बजाया, उनको देख करके बजाया, अथवा जहां जहां पशु जा रहे हैं